पाठ 35 अध्याय 34 और 35। पिछली बार हमने गिनती 33 का समापन किया था और यह निर्गमन के मार्ग का एक प्रकार का क्लिफ नोट्स संस्करण था, जिसमें 42 स्थानों की गणना की गई थी जहां इजरायलियों की जंगल यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थीं। एक ऐसी यात्रा जो अपने समापन से केवल कुछ सप्ताह दूर थी। हमने चर्चा की कि कैसे प्रभु ने मूसा को कुछ सख्त निर्देश दिए थे कि उन्हें कनान पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कैसे करना है, उन्हें देश के हर कोने से सभी निवासियों को बाहर निकालना था, केवल वे ही कनानवासी बचे रहेंगे जिन्होंने अपनी सभी गोत्रों को त्याग दिया है और इसराइल में शामिल हो गए हैं। इसका मतलब यह था कि उन्हें अपने देवताओं और रीति रिवाजों को पूरी तरह से त्यागना होगा और तोरह का पालन करना होगा। स्वाभाविक रूप से बहुत से लोग ऐसा करने का विकल्प नहीं चुनते थे। जो लोग इसराइल के खिलाफ लड़े और अपनी जमीन छोड़ने से इनकार कर दिया, उन्हें मार दिया जाना था। इसके अलावा प्रभु ने मूसा से कहा कि यदि इसराइल ऐसा करने में असफल रहा तो न केवल उस देश में बचे हुए लोग इसराइल के लिए निरंतर कांटे बन जाएंगे, बल्कि प्रभु इसराइल के साथ भी उसी तरह से व्यवहार करेगा जिस तरह से उसने इन मूर्ति पूजकों के साथ व्यवहार करने का इरादा किया था। अध्याय 33। इस निर्देश के साथ समाप्त हुआ कि इसराइल के गोत्रों के बीच क्षेत्र का आवंटन तुरंत शुरू होना चाहिए और इसे दो तरीकों को शामिल करके किया जाना था, चिट्ठियां और आनुपातिकता, यानी प्रत्येक गोत्र को मिलने वाले कनान के सामान्य क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए चिट्ठियां डाली जाएंगी, लेकिन प्रत्येक गोत्र के क्षेत्र का आकार उस गोत्र की आबादी के अनुपात में होगा। खैर, जब से गिनती की पुस्तक का अध्ययन किया गया है, यह पुस्तक तेजी से समाप्त होने वाली है, जिसमें उस क्षेत्र की सीमाओं के बारे में कुछ कानून हैं जो प्रभु इसराइल को दे रहे हैं और कुछ अन्य कानून हैं कि भूमि को कैसे संरक्षित और शासित किया जाना है। पिछले सप्ताह के अध्ययन अध्याय 33 से शुरू होकर गिनती की पुस्तक के अंत तक विषय वादा किए गए देश के आसन्न कब्जे के बारे में है। मुझे लगता है कि 21वीं सदी में हमारे लिए यह कल्पना करना और आत्मसात करना मुश्किल है कि इब्रानियों द्वारा कनान की भूमि पर कब्जा करना कितनी महत्वपूर्ण घटना थी। अगर हम बाइबल के सबसे शानदार क्षणों के बारे में सोचें तो हम शायद सृष्टि, महाप्रलय, लाल सागर का विभाजन और पलायन और यीशु मसीह के आगमन को सूची में सबसे ऊपर रखेंगे। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि अब्राहम की 600 साल पुरानी वाचा कि अब्राहम के वंशजों को हमेशा के लिए अपनी जमीन दी जाएगी का पूरा होना भी उस सूची में शामिल है और सबसे ऊपर है। ठीक वैसे ही जैसे विश्वासी हमारे मसीहा की वापसी का बेसब्री से इंतजार करते हैं। यीशु और उसके राज्य की स्थापना के बाद इसराइल को भी प्रभु द्वारा अपनी वाचा आधारित भूमि विरासत दिए जाने का इंतजार था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि अब्राहम के समय से लेकर तोरह में इस बिंदु तक इब्रानी हमेशा एक ऐसे लोग थे जिनका कोई देश नहीं था। जिस क्षण से प्रभु ने अब्राहम से कहा कि उठो और अपनी जन्मभूमि मेसोपोटामिया छोड़ दो और अपने देश और अपने परिवार से खुद को अलग कर लो, अर्थात उन्हें त्याग दो, उन्हें अस्वीकार कर दो, अब्राहम और वे सभी इब्रानी जो उसकी संतान होंगे सदियों तक जहां भी वे रहते थे वहां के निवासी विदेशी प्रवासी के अलावा कुछ नहीं होंगे। अब्राहम, इसहाक, फिर याकूब, भले ही वे कनान के विभिन्न भागों में घूमते रहे, लेकिन वे उन कनानियों की इच्छा से वहां रहते थे जो उस क्षेत्र के मालिक और नियंत्रण में थे। जब वे मिस्र में रहते थे तो यह फिरौन की इच्छा पर होता था। यूसुफ, जो पूरे मिस्र का विराट वजीर बन गया, मिस्र को अपना घर नहीं मानता था और इसलिए उसने आदेश दिया कि उसके ममीकृत शरीर को उस अद्भुत दिन पर कनान की भूमि पर ले जाया जाए जब इसराइल मिस्र से एक ऐसी भूमि की यात्रा के लिए निकला जो उनकी अपनी होगी। विश्वासियों, यह सब सच और वास्तविक होने और वास्तव में घटित होने के अलावा यह हमारे और हमारी स्थिति का एक नमूना और चित्र भी है। तो रहा जिसका केंद्रीय विषय इसराइल का एक लोगों के रूप में और फिर एक राष्ट्र के रूप में निर्माण है, यह इस बात का एक नमूना है कि मूसा के भविष्य के समय में
विश्वासियों का समूह क्या अनुभव करेगा, एक ऐसा समय जब प्रभु अपने अलग किए गए लोगों में किसे शामिल किया जाएगा और किन शर्तों पर को परिष्कृत करने के उद्देश्य से एक और वाचा बनाएगा। जब अब्राहम ने यहोवा को अपना ईश्वर स्वीकार किया, उसे केवल एल शद्दाई, पर्वत का ईश्वर के रूप में जानते हुए और अतीत की सभी बातों को पीछे छोड़ दिया, तो अब्राहम को यहोवा द्वारा और उसके साथ एक वाचा प्रस्तुत की गई, एक ठोस वादा। वाचा को स्वीकार करके अब्राहम उस वाचा की आशीषों में बंद हो गया। जब हम यीशु को अपने ईश्वर और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हम अतीत को पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि हम वाचा की वास्तविकता को स्वीकार करते हैं जिसकी गारंटी उसके खून से मिलती है। और इस नवीनीकृत वाचा को स्वीकार करके हम इसकी कई आशीषों में बंद हो जाते हैं।
फिर भी अब्राहम द्वारा वाचा स्वीकार करने के बाद प्राथमिक प्रावधान हमेशा के लिए रहने के लिए एक गारंटीकृत स्थान था जो उसका अपना होगा, एक ऐसा स्थान जहां वह और उसके वंशज रहते थे, एक स्थायी घर। उस घर को साकार होने में बहुत समय लगा। इस बीच उसके वंशज एक विदेशी भूमि में अजनबी ही रहेंगे, जैसा कि उस पैटर्न से स्पष्ट है। विश्वासियों, भले ही हम पहले से ही नई वाचा की शर्तों के तहत रह रहे हैं, हमने अभी तक अंतिम परिणाम को महसूस नहीं किया है। रहने के लिए एक स्थायी स्थान, एक ऐसा स्थान जहां हम वास्तव में रहते हैं, एक ऐसा स्थान जो केवल हमारे लिए अलग रखा गया है, और वह स्थान परमेश्वर का राज्य है।
मैं लगभग अपना पूरा जीवन एक आस्तिक के रूप में बिता चुका हूं, लेकिन शायद पिछले 10 से 15 सालों में ही मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या हूं, एक अजनबी जो एक विदेशी भूमि पर रहता है। और मैं तब तक इसी स्थिति में रहूंगा जब तक कि प्रभु यह तय नहीं कर लेते कि मेरे घर जाने का समय आ गया है। सच में मैं दुनिया में काफी सहज था, मैं दुनिया के साथ अच्छी तरह से घुल मिल गया और दुनिया में समृद्ध हुआ। भले ही मैं अपने बेटे को स्वीकार करने के कारण ईश्वर द्वारा आध्यात्मिक रूप से दुनिया से अलग कर दिया गया था, फिर भी प्रभु ने हमें जोर देकर कहा है कि हम यहां के नहीं हैं, कि अपनी नई स्थिति में हम संसार में तो हो सकते हैं परंतु संसार के नहीं हैं। इज़राइल बहुत लंबे समय तक मिस्र में रहा, लेकिन वे कभी मिस्र के नहीं थे, और जैसे जैसे समय बीतता गया वे मिस्र से अलग होते गए। वे इस बात से और भी अधिक अवगत हो गए कि वे गोल खूंटे थे जो चौकोर छेद को भरने की कोशिश कर रहे थे। उतना ही महत्वपूर्ण यह था कि मिस्र के लोग इस बात से और भी अधिक अवगत हो गए कि ये इब्री मिस्र का हिस्सा नहीं थे, कि वे अजीब थे, वे अलग थे और वे फिट नहीं थे। वे केवल दास के रूप में उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति करते थे। ओह, मिस्र के लोगों ने इन इब्रियों द्वारा खेल में लाए गए कार्यों का आनंद लिया, लेकिन साथ ही साथ मिस्र के लोग उनसे घृणा करने लगे। लेकिन हमेशा घृणा नहीं होती थी, पहले इब्रियों का स्वागत किया जाता था। मिस्र के लोगों ने इब्रियों से सीखा भी, उनके कुछ तरीके अपनाए और मिस्र समृद्ध हुआ। हालांकि धीरे धीरे, दशक दर दशक, इब्रियों की अलगाव और भिन्नता ने मिस्र के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। समय के साथ वह जलन करवाहट में बदल गई। अंततः मूसा के जीवन काल के दौरान वह करवाहट हिंसक घृणा में बदल गई, और इसराइल के बचने के लिए मिस्र से बाहर निकाले जाने और उस राज्य में रखे जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जिसे प्रभु ने उनके लिए तैयार किया था। मैं जितना बड़ा होता जा रहा हूं, मुझे उतना ही ऐसा लगता है। मैं अब अपने देश को भी नहीं पहचान पाता हूं। कुछ रातों को मेरे लिए सोना मुश्किल हो जाता है। मैं यह सब सोचता रहता हूं और सोचता रहता हूं कि मेरे नाती नातिन किस तरह की दुनिया का सामना करने जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे सिखाया है। लेकिन मेरे आसपास की ज्यादातर दुनिया कहती है कि कोई सही और गलत नहीं है, कोई अच्छाई और बुराई नहीं है, यह सिर्फ एक सांस्कृतिक विकल्प है। मैं जानता हूं कि सिर्फ एक ईश्वर है, बाइबल का ईश्वर, और उसका नाम यहवे है, क्योंकि मैं उसे व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। लेकिन दुनिया कहती है कि अगर कोई ईश्वर है तो उसे बुद्ध, हिंदी और अल्लाह समेत कई नामों से जाना जाता है।
मैं अब यहां सहज नहीं हूं। मैं एक ऐसे बच्चे की तरह महसूस करता हूं जिसे जन्म के कुछ समय बाद ही गोद ले लिया गया हो और एक दिन उसे एहसास होता है कि वह अपने माता पिता या अपने भाई बहनों जैसा बिल्कुल नहीं दिखता है और वह यह जानने के लिए तरसता है कि वह वास्तव में कौन है। मुझे पता है कि मैं यहाँ का नहीं हूँ और मेरे आसपास के लोग जो यीशु को नहीं जानते हैं वे भी मेरे साथ बहुत सहज नहीं हैं और वे सवाल कर रहे हैं कि क्या मैं उनमें से एक हूँ और क्या मैं यहाँ उनके साथ का हूँ। लेकिन अब्राहम की तरह मुझे भी एक वाचा के तहत रखा गया है, मुझे एक ऐसी जगह का वादा किया गया है जहाँ चीज़ें आखिरकार उस तरह से संचालित होंगी जिस तरह से उन्हें होना चाहिए, एक ऐसी जगह जहां सरकार हमारे मसीहा के कंधों पर होगी, एक ऐसी जगह जहां मैं हूं। इज़राइल की तरह मुझे भी छुड़ाया गया है और मैं अब अपने क्रूर कार्यपालक का हिस्सा नहीं हूं, मैंने अपना पलायन शुरू कर दिया है, मुझे ईश्वर का वचन मिला है और मैं जंगल के रास्ते अपने अंतिम गंतव्य की ओर यात्रा पर हूं, लेकिन मैं अभी भी एक होल्डिंग पैटर्न में प्रतीक्षा कर रहा हूं, मैं अभी तक वहां नहीं पहुंचा हूं।
आज हम ठीक उसी जगह पर बैठे हैं जहां मूसा और इसराइल गिनती की पुस्तक में इस समय थे। परमेश्वर की वाचा का वादा हमारे सामने है और हम वास्तव में इसे देख सकते हैं, हम इसे लगभग सूंघ सकते हैं और जल्द ही, बहुत जल्द हम इसे पकड़ने में सक्षम होंगे। फिर भी यह जीवन जो हम जी रहे हैं और हमारा समय जो हम जंगल में भटक रहे हैं वह निष्क्रिय समय नहीं है। हमारा काम प्रभु के मार्गों को सीखना और उनका अभ्यास करना है, क्योंकि एक बार जब हम अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे तो हम उन मार्गों को यीशु की उपस्थिति में अधिक पूर्णता और शाश्वतता से जी रहे होंगे जितना हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अतः यहां गिनती की पुस्तक में जब इसराइल के लोग वास्तव में अपने गंतव्य को दूर से देख सकते हैं और जानते हैं कि अब बस कुछ दिन, कुछ घंटे ही बाकी हैं, तब परमेश्वर उन्हें कुछ निर्देश देता है कि उन्हें उस देश में कैसे रहना है। आइए गिनती अध्याय 34 में दिए गए कुछ निर्देशों को पढ़ें। गिनती अध्याय 34, सभी पढ़ें। पहले 12 पद केवल वादा किए गए देश की सीमाएं हैं, दिए गए कई बिंदु आज ज्ञात नहीं हैं, लेकिन कई हैं। निश्चित रूप से पूर्वी सबसे भाग यर्दन नदी और पश्चिमी सबसे भाग भूमध्य सागर को पहचानना आसान है, यहां तक कि उत्तरी भाग भी काफी हद तक निश्चित है, लेकिन दक्षिणी सीमा थोड़ी कम निश्चित है। इस मानचित्र को देखिए, क्योंकि यह इन सीमाओं को समझने का सबसे आसान तरीका है। अब लगभग इसी अवधि 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मिस्र के अभिलेख हैं जो कनान की भूमि की सीमाओं का वर्णन करने में लगभग समान है, जैसा कि हम यहां गिनती में पढ़ते हैं, जिसका अर्थ है कि हम जान सकते हैं कि ये सही है। दूसरे शब्दों में यहां गिनती 34 में प्रभु ने जो वर्णन किया है वह उन दिनों में कनान की भूमि की आम तौर पर मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय सीमाएं थीं जो इसराइल द्वारा उस भूमि पर कब्जा करने से पहले की थीं। यहोवा ने कनान की भूमि की सीमाओं को फिर से परिभाषित नहीं किया, उसने न तो कुछ जोड़ा और न ही घटाया।
लेकिन जहां तक दक्षिणी सीमा की बात है, जिसे पद 5 में नहला मिश्रायम, अक्सर अर्थ अंग्रेजी में मिस्र की वादी के रूप में अनुवादित के रूप में पहचाना गया है, यह संभवतः सबसे बड़ा विवाद है। मैं एक मिनट के लिए भी यह नहीं मानता कि यह दक्षिणी सीमा नील नदी है। सबसे पहले हमें कहीं भी इब्रानी शब्द नहला मिश्रायम का इस्तेमाल नील नदी को दर्शाने के लिए नहीं मिलता है।
दूसरा, शब्द नहला का अर्थ जलमार्ग है। इसका अर्थ जरूरी नहीं कि रेगिस्तानी वादी हो जो एक सूखी नदी हो, सिवाय इसके कि जब अचानक कोई तूफान उसमें भर जाए, क्योंकि इसका मतलब एक नाला या एक छोटा जलमार्ग भी हो सकता है जो कभी कभी एक छोटी सी धारा, मौसमी रूप से एक धारा और कभी कभी एक अस्थाई धार होती है। यह किसी भी तरह से मिसिसिपी के आकार की नील नदी का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द नहीं है। तीसरा, चूंकि ये मिस्र के अभिलेख इतने स्पष्ट और लगभग गिनती में कनान की सीमाओं के बारे में रिकॉर्ड के समान हैं, अगर कोई नहला मिश्रायम का अर्थ नील नदी लेता है तो यह दावा करेगा कि कनान में एक समय में पूरा सिनाई प्रायद्वीप शामिल था और यहां तक कि अफ्रीकी महाद्वीप तक फैला हुआ था, जिसमें वह अधिकांश भूमि शामिल थी जिसे हमेशा मिस्र के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। चौथा, चूंकि ये मिस्र के अभिलेख निर्गमन के समान ही अवधि के हैं, अगर कनान में सिनाई प्रायद्वीप या यहां तक कि नील नदी का पूर्वी तट अगर नील नदी की दक्षिणी सीमा थी शामिल था, तो इसका मतलब है कि सिनाई प्रायद्वीप वादा किए गए देश का हिस्सा था। तो ये एक छोटी सी यात्रा रही होगी, शायद कुछ दिन की, मिस्र से खनान तक, और यात्रा शुरू होने से पहले ही समाप्त हो गई होगी, है ना। तो आप देख सकते हैं कि इनमें से कोई भी बात ज्यादा मायने नहीं रखती। अब इस बात पर ज्यादा गंभीर और उचित असहमति है कि नहला मिश्रायम वास्तव में कहां है, लेकिन यह सिनाई तक विस्तारित नहीं हो सकता था जिसे हमेशा मिस्र के क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। अब अगली बात जो वादा किए गए देश की सीमा पर चर्चा करते समय लोगों को भ्रमित कर सकती है, वह है जब कोई इसे गिनती में देखता है और फिर यह जकेल को पढ़ाता है। यह जकेल 47 भूमि विभाजन कुछ हद तक उससे अलग है जो हम गिनती में पढ़ते हैं, लेकिन कहीं भी उतना चरम नहीं है जितना सिखाया गया है और जिस पर मैं एक समय में विश्वास करता था। आइए हम यह जकेल 47 पर जाएं और पद 13 से 23 पढ़ें और फिर सीधे यह जकेल 48 पर जाएं और पद 1 से 14 तक पढ़ें। यह जकेल 47 का 13 से 23 और 48 का 1 से 14 पढ़ें।
अब अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो आप देखेंगे कि क्षेत्रीय आवंटन थोड़ा अलग है। यह कुछ हद तक बड़ा है, लेवियों को क्षेत्र दिया गया है लेकिन उन्हें गिनती आवंटन में कोई क्षेत्र नहीं दिया गया है और उन्हें टोटेम पोल की तरह ढेर किया गया है जिसमें सीमा रेखाएं अनिवार्य रूप से भूमध्य सागर से पश्चिम की ओर शुरू होती है और थोड़ा आगे पूर्व की ओर विशेष रूप से उत्तर में फैली हुई है। तो क्या होता है, हमने पिछले कुछ पाठों में चर्चा की थी कि कैसे यह जकेल में एक निश्चित बिंदु पर कुछ दिलचस्प परिवर्तन हुए हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है एक पुनर्निर्मित मंदिर में बलिदान पूजा की पुनः स्थापना, लेकिन अनुष्ठान प्रक्रियाओं में भी बदलाव जो पुजारी की भूमिका और महत्व को कम करके धार्मिक एमसी की तुलना में स्मारक प्रभावी नहीं समारोहों तक सीमित कर देता है। दूसरे शब्दों में जिस तरह हम फसह या पुनरुत्थान दिवस या यहां तक कि भोज मनाते हैं, ये अनुष्ठान किसी प्रकार का अनुष्ठान नहीं है जो ईश्वर की ओर से किसी प्रकार की निर्धारित प्रतिक्रिया को प्रभावित करता है। उन समारोहों के परिणाम स्वरूप हमारे पाप क्षमा नहीं होते हैं, हम ईश्वर के साथ बेहतर स्थिति में नहीं आते हैं, हम शुद्ध नहीं होते हैं आदि। ये बल्कि मानक ईसाई और मसीहाई यहूदी समारोह हमारे प्रभु के प्रति कृतज्ञता के हर्षोल्लासपूर्ण स्मरणोत्सव हैं जो उन्होंने किए गए महान कार्यों की याद में किए हैं। ऐसा ही यह जकेल में भी होगा, लेकिन ऐसे समय में जब यीशुआ के और भी अधिक कार्य पूरे हो चुके होंगे। मेरा मानना है कि यह जकेल में पढ़े गए इन दर्शनों और तोरह में पढ़े गए दर्शनों के बीच अंतर का कारण यह है कि यह जकेल सहस्राब्दी राज्य काल की बात कर रहा है जिसे मसीहा यीशुआ यीशु मसीह का 1000 साल का शासन भी कहा जाता है, जो आर्मागेडन घटना के तुरंत बाद होता है। चूंकि वह सचमुच और शारीरिक रूप से यरूशलेम में निवास करेगा और वहां से शासन करेगा और कुछ समय के लिए ग्रह पृथ्वी पर बुराई और विद्रोह मौजूद नहीं होगा, इसलिए बहुत कुछ ऐसा होगा जो अनिवार्य रूप से अलग होगा। एक बात के लिए, विश्वासियों की गिनती जो राजा यीशु के अंदर और उसके आसपास रहने के लिए उत्सुक होंगे, भले ही हम ग्रह पर अपनी इच्छानुसार कहीं भी रहने का विकल्प चुन सकें, गिनती के क्षेत्रीय आवंटन से कहीं अधिक बड़ी होगी। मैं आपको बता सकता हूं कि जब वह दिन आएगा तो मैं निश्चित रूप से वहां रहने की योजना बना रहा हूं, इसलिए हम यह जकेल में इस उद्देश्य के लिए बहुत बड़ी मात्रा में भूमि को अलग रखा हुआ देखते हैं। हालांकि मुख्य बात जो गिनती में मूसा के वर्णन के विपरीत यह जकेल द्वारा राज्य की भूमि के वर्णन में घटित होती है, वह यह है कि यर्दन के पूर्वी ओर की भूमि कम या ज्यादा वह भूमि जिस पर मूसा ने रूबेन गाद और मनुष्य के गोत्र के आधे लोगों को बसने की अनुमति दी थी को शामिल किया गया है।
किसी भी मामले में इस सब में एक नकारात्मक बात यह है कि इसराइल ने अपने पूरे इतिहास में कभी भी उन सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं किया या उन पर निवास नहीं किया जो परमेश्वर ने उन्हें गिनती में दिए थे। यहेजकेल में वर्णित की बात तो दूर की बात है, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि चाहे उन्होंने कभी इस पर कब्जा किया हो या नहीं, प्रभु ने इसे अभी भी विशेष रूप से इसराइल के लिए आरक्षित रखा है।
अब 2009 में हमारे लिए और क्या दिलचस्प और प्रासंगिक है, वह यह है कि गिनती 34 की वादा किए गए देश की सीमाओं में वर्तमान सीरिया और लेबनान का लगभग पूरा क्षेत्र शामिल है। क्या यह कोई आश्चर्य की बात है कि सीरिया और लेबनान लगातार इसराइल के साथ युद्ध, कभी ठंडा तो कभी गर्म में है?
पुनर्जन्म वाले इसराइल राष्ट्र की सरकार ने कभी सीरिया या लेबनान पर दावा नहीं किया है, लेकिन सभी पक्ष इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि तोरह इस बारे में क्या कहता है। मुसलमान ज्यादातर ईसाइयों और यहूदियों से बेहतर जानते हैं कि तोरह इस बारे में क्या कहता है कि इस भूमि का मालिक कौन है। यही वजह है कि वे शैतान के प्रतिनिधि के रूप में इसके लिए मरने तक लड़ने को तैयार हैं। हालांकि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहोवा और शैतान दोनों ही इस बात को जानते हैं। सीरिया और लेबनान के लोग अब्राहम और उसके इजरायली वंशजों से वादा की गई भूमि पर रह रहे हैं। यह तथ्य कि सांसारिक सरकारें और संस्थाएं, यहां तक कि चर्च भी इस बात से इनकार करते हैं, स्वर्ग में इसका कोई मतलब नहीं है।
फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूसा और फिर यहेजकेल को बताई गई भूमि अब्राहम को बताई गई भूमि से थोड़ी अलग है। इस मानचित्र को देखें। अब्राहम को जो दिया गया था उसके बारे में समझने वाली बात यह है कि यह मूसा को दी गई भूमि से कहीं अधिक सामान्य है। साथ ही चूंकि समय के साथ गोत्र आगे बढ़ गए और राष्ट्रों का उदय हुआ, साम्राज्य आए और गए, सीमाएं बदल गई और लोगों के समूह बढ़े या सिकुड़े या पूरी तरह से गायब हो गए, इसलिए मूसा और फिर यहेजकेल के समय तक जगहों के नामों और कबीलों के स्थानों में बहुत बदलाव आया।
पद 13 से शुरू करते हुए हमें कुछ तथ्यों का सारांश मिलता है। उदाहरण के लिए, वादा किया गया देश 10 गोत्रों में विभाजित किया जाना है, न कि 12 में जैसा कि मूल रूप से निर्धारित किया गया था। वास्तव में 9 गोत्रों और मनुष्य के गोत्र के 1/2 को भाग मिलना था। इसका कारण बेशक यह है कि रूबेन, गाद और मनुष्य के गोत्र के 1/2 ने वादा किए गए देश के बाहर रहने का फैसला किया और इसीलिए कनान में रहने के अधिकार छोड़ दिए। अध्याय का समापन इसराइल के कबीलों की एक लभी सूची के साथ होता है और यह भी कि इतिहास में उस समय कौन राजकुमार मुखिया था प्रत्येक गोत्र का। इसलिए इन 10 लोगों को उनके द्वारा नियंत्रित गोत्र के लिए क्षेत्रीय आवंटन दिया जाएगा और फिर यह उन पर निर्भर था कि वे अपने गोत्र के भीतर विभिन्न कबीलों और परिवारों के बीच अपने क्षेत्र को अपनी इच्छा अनुसार विभाजित करें। आइए अध्याय 35 पर चलते हैं। गिनती अध्याय 35, सभी पढ़ें।
यहां लेवी गोत्र के लिए रहने की व्यवस्था का मामला उठाया गया है, जिसकी शुरुआत इस बात की याद दिलाने से होती है कि क मूसा भूमि का आवंटन कर रहा था और ख जब भूमि का आवंटन हुआ तब इसराइल पूर्व मोआब देश में यर्दन नदी के पूर्वी किनारे पर था। और आयत 2 में हम देखते हैं कि चूंकि लेवियों के लिए 48 शहर अलग रखे जाने थे, प्रत्येक गोत्र को यह तय करना था कि वे लेवियों को कौन से शहर स्थायी रूप से देंगे। शहर के अलावा प्रत्येक शहर के लिए एक निश्चित मात्रा में जमीन भी थी जिसका इस्तेमाल लेवियों के जानवरों के लिए चरागाह के रूप में किया जाता था।
आइए हम इस बात को लेकर भोले न बने कि लेवियों को क्या दिया गया था। वे दीवार वाले या बड़े शहर नहीं थे और आम तौर पर कहें तो वे ऐसे शहर नहीं थे जिन्हें इजरायली शुरू से बनाते, बल्कि ये 48 शहर सैकड़ों या हजारों नहीं छोटे गांवों और कस्बों में से होंगे जिन्हें इजरायली सेना ने विजय के दौरान विभिन्न कनानी गोत्र से कब्जा किया होगा। इनमें से ज्यादातर शहरों में मुट्ठी भर इमारतें होंगी। आइए हम यह भी समझें कि जयंती वर्ष महामारी से संबंधित कानूनों का एक अनिवार्य हिस्सा की तरह मूल स्वामी के अलावा किसी और को भूमि स्थायी रूप से हस्तांतरित करने पर प्रतिबंध, एक ऐसा उत्सव जो अभिलेखों से संकेत मिलता है कि कभी भी एक बार भी नहीं हुआ लेवियों को कभी भी 48 शहरों की पूरी राशि नहीं मिली। ओह, उन्हें 48 शहर सौंपे गए होंगे, लेकिन इन शहरों में रहने के लिए लेवियों की क्षमता के लिए यह महत्वपूर्ण था कि प्रत्येक गोत्र लगातार उन लेवियों की देखभाल करे जो उनके क्षेत्र में निर्दिष्ट लेवीय शहरों में रहते थे, और कई मामलों में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। यहोशू की पुस्तक में इनमें से कई लेवी नगरों के नाम का उल्लेख है, लेकिन केवल बड़े नगरों का ही। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कुछ गोत्रों ने लेवियों को रहने के लिए अमानवीय और जले हुए गांव दिए जो उस गोत्र के लिए बहुत कम मूल्य के थे, इसलिए लेवियों ने कभी भी वहां नहीं जाकर बस गए और इसके बजाय उन्हें दिए गए अधिक ठोस शहरों में ही अपना ध्यान केंद्रित किया, खासकर उन कुछ शहरों में जहां दीवारें थीं। आखिरकार उन्हें अन्य सभी इसराइलियों की तरह डाकुओं के लुटेरे गिरोहों और कभी कभी अपने क्षेत्र का विस्तार करने के इरादे से राजाओं की सेनाओं के हमलों की कभी न खत्म होने वाली श्रृंखला से खुद को बचाना था। विदेशी गोत्रों ने इसराइल और लेवियों और पुजारियों के बीच कोई अंतर नहीं किया, सभी निष्पक्ष शिकार थे। पद 6 प्रसिद्ध शरण नगरों के बारे में बात करना शुरू करता है और इनमें से कुल 6 होने हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनमें से 3 यर्दन के पूर्वी किनारे पर, वहां रहने वाले 2 और 1 अधूरा गोत्रों के लिए, और अन्य 3 यर्दन के पश्चिमी किनारे पर 9 गोत्रों के लिए होने चाहिए जो वादा किए गए देश में रहते थे। और हमें बताया गया है कि जिस तरह से प्रत्येक गोत्र को मिलने वाले क्षेत्र को तय करने के लिए सूत्र का हिस्सा उस गोत्र के सापेक्ष आकार पर आधारित था, उसी तरह यह भी होगा कि लेवियों को दिए गए शहरों का आकार प्रत्येक गोत्र को मिलने वाले क्षेत्र की मात्रा पर आधारित होगा। यदि किसी गोत्र के पास बहुत अधिक क्षेत्र था तो लेवियों को दिए जाने वाले शहर भी बड़े होने चाहिए थे।
चूंकि यह मामला था, इसलिए 48 शहरों में से प्रत्येक के साथ कितनी चरागाह भूमि होनी चाहिए यह तय करने का एक बहुत ही सरल तरीका निर्धारित किया गया था। यह था कि 1000 क्यूबिट लगभग 500 गज की अनुदैर्ध्य माप शहर की लंबाई के अतिरिक्त होनी चाहिए। इसलिए शहर जितना बड़ा होता, लेवी के प्रत्येक शहर को दी जाने वाली 1000 क्यूबिट चरागाह भूमि में उतनी ही अधिक वृद्धि होती।
अब 6 शरण नगर, ये 48 नगरों में से 6 थे, 48 के अतिरिक्त नहीं, यहोवा की न्याय प्रणाली के लिए केंद्रीय थे, परंतु इससे भी अधिक उनके विषय में कानून इस आधारभूत धर्म वैज्ञानिक सिद्धांत से निपटते थे, परमेश्वर इतना पवित्र है कि वह ऐसी भूमि पर उपस्थित नहीं हो सकता जो हत्या से अपवित्र हो गई हो।
जब हम लेव्य व्यवस्था के बारे में सोचते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के सभी नियमों में रक्त कितना महत्वपूर्ण है। फिर भी हमें यह भी दिखाया गया है कि जबकि रक्त पापों के प्रायश्चित का एकमात्र प्रभावी साधन है, अर्थात केवल रक्त ही प्रायश्चित ला सकता है, रक्त का अनुचित रूप से बहना प्रभु के लिए घृणित है और इसलिए यह अशुद्ध करता है। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण मासिक धर्म के रक्त का मामला है, जो एक अपवित्र चीज है जिसके लिए शुद्धिकरण होना चाहिए। फिर भी एक उचित रूप से बलिदान किए गए जानवर का खून कुछ सबसे गंभीर, या जैसा कि बाइबल उन्हें कहता है, अत्याचारी पापों को छोड़कर सभी के लिए प्रायश्चित कर सकता है।
यहां मुद्दा एक इंसान की हत्या का है और यह हत्या नर हत्या है या नहीं, इसलिए ये आयतें परिभाषित करती हैं कि हत्या क्या है, न कि नर हत्या क्या है, और प्रत्येक मामले में शरण नगरों की भूमिका क्या होनी चाहिए। अगले सप्ताह हम इसकी ओर रक्त प्रतिशोधी की भूमिका की जांच करेंगे और अगले सप्ताह हम गिनती की पुस्तक का अध्ययन समाप्त करेंगे।